ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञान मती माता जी की जय। भव्यात्माओं, गोमठ सार जीव कांड की क्लास प्रारंभ होने जा रही है, मंगलाचरण करके और उसका सभी लोग अध्ययन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णिमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस पर्वणम गोच्छम। गोमठ सार जीव कांड नाम के ग्रंथ को आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है और उसके अंदर 734 गाथाएं हैं। उनमें से पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताई ने संकलन करके और आप सभी विद्यार्थियों को प्राथमिक रूप से जीवकांड ग्रंथ के सार को समझने के लिए केवल 173 गाथाओं को संग्रहित करके गोमठ सार जीवकांड सार नाम के ग्रंथ को हमें प्रदान किया है। उसी में आप सब स्वाध्याय कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आचार्य देव ने मंगलाचरण के माध्यम से अपने लक्ष्य को बताया कि जीव द्रव्य को 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से हम यहाँ पर कहेंगे। 20 प्ररूपणाओं में गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना या मग्गणाओ या ओगो विय कमसो बीसम तु परुवणा भणिदा, ये 20 प्ररूपणाएं कही गई हैं। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ये 6 और 14 मारणाएं। तो 14 और 6 20 हो जाते हैं। इन 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से संसारी जीवों की प्ररूपणा माने उनका कथन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम प्ररूपणा है गुणस्थान, गुण जीवा का है ना, गुण माने गुणस्थान नाम की प्ररूपणा का वर्णन करते हुए गुणस्थान के 14 भेद बताकर और आपको हमने 9वें गुणस्थान तक पहुंचाया है, अर्थात 9 गुणस्थानों की परिभाषाएं आप जान चुके हैं। उसमें से 6 से लेकर और 14 गुणस्थान तक मुनि और जिनेंद्र भगवान की संख्या आती है और 5 गुणस्थान प्रारंभ के जो हैं वे गृहस्थों के और एक देश संयम धारण करने वाले प्रतिमाधारी छुल्लक ऐलक आदि के भी होती हैं। अब क्रम प्राप्त गाथा नंबर है 21 और 21 नंबर की गाथा में हम चलते हैं 10वें गुणस्थान के स्वरूप को जानते हैं, अर्थात 9 गुणस्थान तक आपने जाना कि मोहनी कर्म के बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि आदि हुआ करती है, यानी संजलन कसाय कि जो क्रोध मान माया लोभ रूप हैं उनमें से बादर लोभ 9वें गुणस्थान तक है और सूक्ष्म लोभ आता है 10वें गुणस्थान में भी, उसके स्वरूप को पढ़ेंगे।
दुद्को सुम्भयवत्तम
हो ही जहा सुहम राय संजुत्तम
एवं सुहम कसाओ
सुहम सरागोतिना दवो।
सामूहिक गाथा पढ़िएगा। दुद्को सुम्भयवत्थम होई जा सुहम राय संजुत्तम संयुक्तम एवं सुहम कसायो सुहम सरागो तिना दवो धौत कौसुंभ वस्त्रम भवति यथा सूक्ष्म राग संयुक्तम एवं सूक्ष्म कसायः सूक्ष्म सराग इति ज्ञातव्यः। अब क्या कहा कि दसवें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय माने सूक्ष्म कसाय, जहां पर शेष रह जाती है उस गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। उसके लिए कहा कि दुदको सुंभवत्थम, अर्थात जैसे धुले हुए कौसुम्बी कसुमी वस्त्र यानी कि जो टेसु होता है, टेसु जिसे होली में होली के समय लोग उस फूल को उबाल करके और केसरिया जैसा रंग हो जाता है, पहले उससे होली खेलते थे लोग और वो सुहाना रंग होता था, शीघ्र ही छूट जाता था और कोई हानि भी नहीं करता था। आज ये सब स्थितियां बदल गई और तरह तरह के केमिकल के रंग आने लग गए, उनकी बात अलग है। यहाँ पर प्राचीन काल के उदाहरणों को ही आचार्य देव घटित करते हुए कहते हैं कि जैसे कौसुम्बी वस्त्र जो लाल रंग के होते हैं, वो कौसुम्बी पुष्प के जल से रंगे जाते हैं, उनको धुलने पर भी उनकी थोड़ी सी सुर्खी अर्थात थोड़ा सा कलर उसमें रह जाता है, यानी बिल्कुल सफेद नहीं हो पाता जो रंगा गया है टेसु से, उस फूल के जल से। और उसको जब पुनः पूरे अच्छे से जल से धुलते भी हैं तो भी थोड़ा सा उसमें रंग रह जाता है। उसी प्रकार से कहा कि एवं सुहम कसाओ, इसी प्रकार से सूक्ष्म कसाय जहां पर रह जाती है उसे कहते हैं सूक्ष्म सरागो तिना दवो। सूक्ष्म सराग अवस्था अर्थात सूक्ष्म राग से यहां क्या लेना, संज्वलन लोभ की सूक्ष्म अवस्था, जो हम कह तो रहे हैं लेकिन बीत रागी निर्विकल्प मुनिराजों के कुछ पता भी नहीं चलता, परंतु यह सूक्ष्म कसाय सूक्ष्म लोभ सत्ता में रहता है। तो उस सूक्ष्म राग सूक्ष्म लोभ कसाय से युक्त अवस्था जिनकी होती है उनको सूक्ष्म सांप्राय नाम की दसम गुणस्थान वर्ती कहा जाता है। ये तो मुनियों को ही होती है, किसी श्रावक श्राविका को तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे जैसे गुणों में आगे बढ़े गुणस्थान ऊपर के बढ़ते चले गए, अर्थात गुणस्थान नाम ही इसलिए है जो गुणों के स्थान हैं। तो जैसे जैसे गुणों की वृद्धि होती है, आत्मा के गुणों की वृद्धि होती है, ऐसे ऐसे गुणस्थान की सीढ़ियां ऊपर चढ़ते चले जाते हैं मुनिजन। तो जहां पर तीन प्रकार के करण परिणामों से क्रम से लोभ कसाय के बिना चारित्र मोनि कर्म की 20 प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षय हो जाने पर सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त केवल लोभ कसाय का ही उदय पाया जाए, उसको सूक्ष्म संप्राय नाम का दसवां गुणस्थान कहते हैं। तो ये क्या है, यानी कि जो चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियां हैं, इनको आपने नोट ही कर लिया होगा, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संजलन, इन तीनों कसायों की चतुष्क क्रोध मान माया लोभ, तो 4 3 12 हो गए, 4 3 12 और 9 9 कसाय मिल गई, तो 21 कर्म प्रकृतियां जो हैं ये चारित्र मोहनी की प्रकृतियां कहलाती हैं। धीरे धीरे जैसे इन प्रकृतियों का नाश होता है, ऐसे ही मोहनी कर्म नष्ट होकर के और ये जीव केवली अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इन 21 प्रकृतियों में से 20 प्रकृतियां जहां या तो उपशम हो गई हैं या क्षय को प्राप्त हो गई हैं, अर्थात जो उपशम श्रेणी पर चढ़ रहे हैं उनके 20 प्रकृतियों का उपशम हो जाता है, और जो क्षपक श्रेणी पर चढ़ चुके हैं उनके 20 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, बाकी 21वीं बस्ती है कौन सी, केवल सूक्ष्म लोभ संजलन लोभ। उस लोभ कषाय का ही जहाँ केवल मात्र उदय पाया जाता है, ऐसी अवस्था को आप समझें कि दसवां गुण स्थान, क्योंकि केवली भगवान ने सबके भावों को जाना है, इसीलिए वे सर्वज्ञ कहलाए हैं। जो अनागत भविष्य काल की भी पर्याय हैं उनको भी जान लेते हैं, इसलिए गौतम स्वामी ने सर्वज्ञ की परिभाषा को भी बताया है कि जो त्रैकालिक द्रव्य और उनकी एक एक सूक्ष्म पर्यायों को भी जान लेते हैं, ऐसे भगवान सर्वम जानीति इति सर्वज्ञः। सब कुछ जानने के कारण जिनके अंदर सर्वज्ञ की संज्ञा सार्थक बैठती है, उन सर्वज्ञ भगवान ने ही इन गुणस्थानों को कहा है, वरना आप तो अपना ही गुणस्थान नहीं जान सकते कि आज हम कहाँ हैं। भले ही थर्मामीटर को हमने जान लिया कि जो सच्चे देव सास गुरु के श्रद्धानी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, जिन्होंने व्रतों का पालन करना शुरू कर दिया है, देश संयत हैं, जिन्होंने पांचों पापों का संपूर्ण त्याग कर दिया है, वे सकल संयम की ओर अग्रसर हो गए, और सकल संयम को प्राप्त करने के बाद भी जो अन्य और कर्मों को नष्ट करने में एकदम तत्पर हो गए हैं, बीतराग निर्विकल्प समाधि रूप ध्यान के अंदर जो बैठ गए हैं, एकदम स्थित हो गए हैं, वे इन उच्च गुण स्थानों को प्राप्त करते हैं, और बिना इच्छा के उनकी सारी प्रवृत्तियां हुआ करती हैं। उनका पुरुषार्थ केवल इतना ही है कि वे अपने आत्मा को शरीर से एकदम भिन्न समझ लेते हैं, और भिन्न समझ करके ही वे उपसर्गों को सहन करके और शरीर से एकदम निर्मम होकर के केवल आत्मा को भगवान बनाने की ओर अग्रसर रहते हैं। अब हम चतुर्थ काल के उत्तम सवनधारी मुनियों की बातें सुनते हैं। किसी ने मस्तक पर जल रही अंगीठी का उपसर्ग झेला, पांडवों ने अपने शरीर पर लोहे के जो जलते हुए आभूषण पहना दिए गए उसको भी झेला, शरीर जला और कर्म जलते गए। लेकिन आज के युग के चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज को लीजिए, हम ही बताते हैं। हम बुंदेलखंड की यात्रा को गए, वहां द्रोणागिर में पर्वत की वंदना कर रहे थे, एक स्थान आया एक शिला पर जहां कवि आचार्य शांति सागर महाराज बैठ करके और ध्यान किया करते थे। हमें लोगों ने बताया कि माता जी यहाँ पर रोजाना रात को शेर बैठा रहता था और आचार्य से एकदम आत्म ध्यान में लीन रहते थे, शेर ने कभी उनका कुछ भी बिगाड़ा नहीं, यानी उनके ध्यान की इतनी एकाग्रता रहती थी, यानी सातवें गुण स्थान के अंदर वे आचार्य महाराज बिल्कुल सातिशय अप्रमत्त की ओर ही मानो बढ़ रहे थे, और ऐसी अवस्था में पहुंच करके उन आचार्य श्री की आत्मा के शुभ्र परमाणु ध्यान के परमाणु बाहर आते थे और वहां शांति ही शांति सारे परमाणुओं में फैल जाती थी। इसलिए शेर जैसा सिंह जैसा हिंसक प्राणी भी वहां आकर के शांत हो जाता था। कैसे कैसे उपसर्ग सहन किए, अरे आज शांति सागर महाराज का नाम लेते ही मस्तक नत हो जाना चाहिए। उन्होंने अपने शरीर पर सर्प के उपसर्ग को कई कई बार झेला, क्या साधारण कोई मनुष्य झेल सकता है, सांप को देखते ही दूर से डर के भाग जाते हैं। और आचार्य महाराज के शरीर पर कोगनोली के अंदर और पोन्नूर की गुफा के अंदर कई कई बार सांप आकर के घंटों घंटों और उनके शरीर से लिपटा रहता था, ऐसा लगता था कि जैसे चंदन के पेड़ में बिस्तर जाकर के लिपट गया तो जैसे चंदन के पेड़ का कोई बिगाड़ नहीं कर पाता, ऐसे आचार्य श्री चंदन के समान शीतल थे, शांत थे, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मैं आपको भले ही दसवें गुण स्थान की बात बता रही हूँ, वहां तो बिल्कुल आत्मा में लीन शरीर से निष्प्रय शरीर से एकदम निश्चल, उन्हें पता ही नहीं होता है कि शरीर कहाँ है, क्या है, केवल आत्मा की ओर ही उनका ध्यान है। कहते हैं एक बार शांति सागर महाराज के शरीर पर खूब सारी चींटियां चढ़ गईं, बहुत सारी चींटियां, और चींटियां चढ़ रही थी। जब श्रावकों ने आकर के देखा महाराज ध्यान में लीन है, और कहीं दूर एक दो थालियों में चीनी रख दिया, शक्कर, और वहां धीरे धीरे जब चींटियां जाने लग गईं, कोमल वस्त्र से महाराज के शरीर को साफ किया, एकदम खूनम खून हो रहा था पूरा शरीर। देखो आपने तो एक चींटी काटने लगती है, काटती भी नहीं, अगर शरीर पर चलते रहती है तो सरसराहट महसूस देती है, वही हाथ पहुंच जाता है और उसको हटाने का उपक्रम करने लगते हैं। एक मच्छर को काटने का भी कष्ट नहीं सहन कर पाते। ऐसे में आज से मात्र 70-80 साल पहले वे आचार्य शांति सागर महाराज हुए। हम बात करते हैं चतुर्थ काल के मुनियों की, लेकिन आज इस पंचम काल के अंदर ही जिनके दर्शन ज्ञानमती माता जी ने किए हैं, और एक बार नहीं तीन तीन बार दर्शन किए हैं, तो आचार्य देव का आचार पदारोहण शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। अगर उनके एक एक गुण का बखान सुन भी लें तो समझो अपनी आत्मा शांत शीतल पवित्र हो जाएगी, क्योंकि आज पंचम काल के अंदर भी इतना उपसर्ग सहन करने वाले मुनिराजों के नियम से सप्तम गुण स्थान हुआ करता है, यानी भावलिंगी सच्चे मुनिराज के रूप में, चतुर्थकालीन मुनिराज के रूप में हम सब ने आचार्य शांति सागर, वीर सागर आदि संतों को पाया और उन्हीं के संस्कार प्राप्त किए। पूज्य ज्ञानमती माता जी ने जिनको आज आप अपने चरण चक्षुओं से देख रहे हैं, तो जब इन गुणस्थानों का प्रकरण पढ़ती हूँ तो इतना अच्छा लगता है कि जो ये संत जिन गुणस्थानों में हैं उसमें कितनी तरतमता को प्राप्त कर सकते हैं, पवित्रता को। जैसे एक ही क्लास में कई विद्यार्थी पढ़ते हैं, कोई बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, कोई मध्यम होते हैं, कोई जघन्य होते हैं, कोई फेल भी हो जाते हैं। ऐसे ही एक ही गुण स्थान में कोई कम उपसर्ग परिसर सहन कर पाते हैं, कम रूप में गुणों को प्राप्त कर पाते हैं, कोई बहुत अच्छे निकल जाते हैं, तो उनका मोक्ष मार्ग बहुत जल्दी प्रशस्त हो जाता है। तो भव्यात्माओं आप जानना कि दसवें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय, जिसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र तो है ही वहां, लेकिन यथाख्यात चारित्र से कुछ ही न्यूनता, कुछ ही कमी वहां पर रह जाती है, बाकी उनके असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। ये दसवें गुण स्थान की बात मैंने आपको बताई है। इस लक्षण को जानकर ये समझना है कि आज पंचम काल है, हीन संगनन है, इस गुण स्थान तक नहीं पहुंच सकते मुनिराजगण, छठे सातवें गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं, रहते ही हैं छठे और सातवें गुण स्थान में, क्योंकि उनका काल केवल अंतर मुहूर्त है। आप सब भी चौथे पांचवें गुण स्थान तक अपनी श्रेणी को पहुंचा सकते हैं, इसलिए वहां तक का पुरुषार्थ करके और श्रावक की चरम अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करें। ये गोमठ सार जीव कांड सार के आज के स्वाध्याय का सार समझना। अब हम आगे चलते हैं।